अरुणिमा, तुम्हें ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए, चलो बैठो। और ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया है? आस्तिक अरुणिमा से कहता है। तो अरुणिमा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आस्तिक, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है? क्या किया तुमने अभी अभी? आस्तिक ने अरुणिमा को बहुत ही प्यार से देखा, जैसे कि सच में कुछ नहीं हुआ है। और उसे ऐसे देखकर अरुणिमा और ज्यादा डर जाती है। आस्तिक अरुणिमा के सामने बैठा हुआ उसे प्यार से देख रहा था और उसने अपने दोनों हाथों से अरुणिमा के गालों को छू लिया और वो मन ही मन एक तब से हैरान हो जाती है। आस्तिक की तरफ देखना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तुम बस आराम करो, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर अंदर आते हैं। उसके साथ नीरज और शेर भी थे। वो खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ सामने बांधकर वो अरुणिमा को देखने लगा जैसे डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। उसने धीरे धीरे करके अरुणिमा को चेक किया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर जैसे ही केबिन से बाहर निकलते हैं, उसके पीछे आस्तिक भी बाहर आ जाता है। आस्तिक ने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर, रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर आस्तिक को देखते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, हमने आपके कहने पर उनके सारे टेस्ट करवाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बांझ नहीं है। आस्तिक ने एक राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कितना बड़ा विशाल समंदर है, जो ये सुनने के साथ ही शांत हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और खुशी खुशी को अंदर ही अंदर महसूस करने लगा। लेकिन उसके बाद आस्तिक ने तुरंत कहा, लेकिन मेरे फादर तो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट में अरुणिमा की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बता रहे थे। डॉक्टर ने हाँ में सर की तरह हिलाते हुए कहा, जी मिस्टर रायचंद, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी वाइफ पूरी तरह से बच्चा नहीं करने की कंडीशन में है, पर वो जिस सिचुएशन में है, वैसे में बच्चा कंसीव करना भी बहुत मुश्किल है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर, साफ साफ बताइए, आस्तिक ने नाराजगी जताते हुए पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, दरअसल हमने मैडम के सारे टेस्ट करवाए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम है। इसकी संभावना सिर्फ 2% है। आस्तिक का चेहरा सफेद हो जाता है। वो एक झटके में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, डॉक्टर, मुझे एक क्लियर जवाब चाहिए। ये 50% की केबीसी मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि जब मैं गेम खेलने पर आता हूँ तो कोई लाइफलाइन नहीं है। घुमा फिरा कर बात करने के बजाय सीधा बताओ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं। डॉक्टर की तो हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, जी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन लेकिन आस्तिक ने डॉक्टर को एक झटके से छोड़ दिया जिससे डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है और आस्तिक उसे कहता है, कोई लेकिन नहीं, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे 2% को 200% मैं साबित करूंगा। तो वहीं अरुणिमा हॉस्पिटल के कमरे में अकेली थी। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आस्तिक ने उसके लिए अपने पूरे परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया है और ये बात उसके दिमाग में उसे अपराध बोध की तरह महसूस करवा रही थी। अरुणिमा जानती थी कि आस्तिक ने इस पोजीशन को पाने के लिए कितनी मेहनत की है और खास करके माफिया में शामिल होने के लिए तो उसने किसी की भी परवाह नहीं की, लेकिन सिर्फ अरुणिमा के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अरुणिमा का दिल एक दर्द से भर गया था। भले ही आस्तिक उसके साथ रहना चाहता था और वो उसे प्यार करता था, वो ये महसूस करते हुए खुश थी, लेकिन आस्तिक की कितने सालों की मेहनत को उसने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर वो कैसे खुश रह सकती थी? और ऊपर से अरुणिमा की ऐसी हालत जिससे उसे ये महसूस होता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। अरुणिमा को नहीं पता था कि आस्तिक को बच्चों से इतना लगाव महसूस हो जाएगा कि वो उन सबसे ऊपर भी अरुणिमा को ही रखेगा। अगर पहले पता होता तो शायद वो बच्चों के बारे में पहले ही बता देती और आज हालात कुछ और होते। बस कुछ रोज पहले तक तो अरुणिमा को लगा सब कुछ ठीक है, उसकी जिंदगी बहुत आराम से कटेगी और वो जल्दी आस्तिक को बच्चों के बारे में बता देगी। आस्तिक अगर इन बच्चों को नहीं भी रखना चाहेंगी तो अरुणिमा उसके फैसले के साथ होगी, भले ही इसके लिए उसने अंदर से खुद को कितना ही मजबूत क्यों ना किया हो, लेकिन वो आस्तिक के प्यार में इस कदर खो गई थी कि वो अब उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आस्तिक के एक फैसले ने अरुणिमा को फिर से इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अरुणिमा को अस्पताल में 2 दिन हो गए थे और अरुणिमा ने आस्तिक से कहा था कि उसके पेरेंट्स को इस दुर्घटना के बारे में कुछ ना बताएं। वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स दुखी हों, खास करके उसके पिता, जब वो अभी अभी ठीक होना शुरू हो रहे थे। आस्तिक को एक जरूरी काम था इसलिए उसे 2 घंटे के लिए जाना पड़ा था, लेकिन वो नीरज और शेर के साथ बाकी सिक्योरिटी टीम अरुणिमा की सेफ्टी के लिए रखकर गया था। अरुणिमा अपने कमरे में थी और यही सब सोच रही थी। पिछले 2 दिनों से उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी। उसने दरवाजे के पास कुछ आहट सुनी जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। इस वक्त कौन आ सकता है, अभी तो रात हो रही है, इस समय तो हॉस्पिटल स्टाफ भी यहाँ नहीं आता है और आस्तिक की टीम में से किसी की हिम्मत नहीं है इतनी रात को अरुणिमा के कमरे में दाखिल होने की। अरुणिमा एकदम से डर जाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है और एक काले कपड़ों में कोई लंबा सा आदमी कमरे में दाखिल होता है तो अरुणिमा घबराते हुए तुरंत उससे सवाल करती है, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी, नीरज कोई है क्या बाहर? अरुणिमा चिल्लाने लगती है, पर तभी उस शख्स ने अपने माथे से वो लंबा सा हैट हटाया और वो मास्क उतारा जिसे देखकर अरुणिमा एकदम से चौंक जाती है। डैडी जी, अरुणिमा के सामने इस समय पुष्कर रायसन खड़ा था और वो ही छुपाकर अरुणिमा से मिलने आया था। पुष्कर जी ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, अच्छा है कि इस वक्त तुम अकेली हो, इसीलिए तुमसे अकेले में बात करना सही रहेगा। अरुणिमा घबराते हुए पुष्कर जी को देख रही थी। तो पुष्कर जी ने अरुणिमा को गुस्से में देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी में बहुत से बुरे लोग आए और चले गए, लेकिन तुम उन सबसे आगे हो, क्योंकि सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया है, और तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मैंने उसे वो सब दिया जो उसे देना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसके लिए चुनकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और तुम्हारी मौजूदगी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की। अरुणिमा हैरानी से पुष्कर जी को देख रही थी। पुष्कर जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहना जारी रखा, मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके से आस्तिक को अपने जाल में फंसा लोगी कि वो तुम्हारे अलावा और कुछ सोच भी नहीं पाएगा। पिछली बार जब मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला था, तभी मैं तुमसे कहा था कि इस बारे में थोड़ा सोच समझ कर बात करना आस्तिक से, लेकिन देखो तुम्हारी बेवकूफी के चलते क्या क्या हो गया है। नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो। पहले मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ हो, इसीलिए आस्तिक तुम्हें अपने साथ रख रहा है, लेकिन अब पता चला तुम बेवकूफ नहीं हो बल्कि हद से ज्यादा चालाक हो। पर अपनी चालाकी से ही तुमने आस्तिक को मेरे खिलाफ भड़काया है। शाबाश अरुणिमा, शाबाश, मानना पड़ेगा बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी करी थी तुमने। अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए। पुष्कर जी के शब्द शहर की तरह उसके कानों में घुल रहे थे। वो तेजी से सांस लेने लगी। उसने पुष्कर जी को देखते हुए कहा, डैडी जी, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि आस्तिक आपसे ऐसा कुछ कहेंगे।
अरुणिमा ने धीमी सी आवाज में अपनी बात कही, लेकिन पुष्कर जी ने कठोर शब्दों में कहा, लेकिन तुमने ऐसा किया अरुणिमा, तुमने कर दिखाया। आखिरकार तुमने आस्तिक को अपने पूरे परिवार के और पूरे गिरोह के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, इतने सालों तक माफिया में अपनी जगह बनाने के बाद उसे अपने कदम पीछे लेना बहुत आसान होता है? अगर ऐसा होता तो मैं वो पोजीशन कब की छोड़ चुका होता। किस चीज़ की कमी है मेरे पास? पूरा परिवार है, दौलत है, शोहरत है, शहर में नाम है, रुतबा है, लेकिन फिर भी ना तो मैं अंडरवर्ल्ड से दूर रह सकता हूँ और ना ही अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे जाने देंगे। ये माफिया, ये अंडरवर्ल्ड, ये सब एक चाल है अरुणिमा, जिसमें इंसान जितना फंसता है उतना ही उलझता चला जाता है। और सारी माफिया अंडरवर्ल्ड को ये पता था कि आस्तिक अगला किंग बनने वाला है। ऐसे में उसके दोस्त नहीं दुश्मन ज़्यादा हैं। और तुम्हें लगता है कि उसका इस तरीके से माफिया को छोड़ देना बहुत बहुत आसान तरीका काम होगा? नहीं, उसके दुश्मन हर एक कदम पर उसकी जान के प्यासे हो जाएंगे। तुम्हारा आस्तिक की ज़िंदगी में रहना आस्तिक को मौत के करीब ले जाएगा। जैसे ही पुष्कर जी ने ये कहा, अरुणिमा एकदम से बौखला जाती है। वो जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डैडी जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आस्तिक को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन पुष्कर जी ने गुस्से में कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि आस्तिक को कुछ ना हो और वो हमेशा सही सलामत और खुश रहे, तो चली जाओ उसकी ज़िंदगी से, चली जाओ। मुझे पता है कि शुरू शुरू में उसे तकलीफ होगी, लेकिन मैं उसे संभाल लूँगा। उसके पास इतना बड़ा बिजनेस है, माफिया में उसकी पावर है, इन सब के साथ वो तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगा। इसीलिए चली जाओ, आस्तिक की ज़िंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि कभी लौट कर वापस ना सको। अरुणिमा एकदम हैरान हो जाती है। उसने हैरानी से पुष्कर जी से सवाल किया, तो क्या आप यहाँ मुझे धमकी देने आए हैं और मुझे आस्तिक से अलग करने आए हैं? लेकिन पुष्कर जी के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। वो हंसी कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। वो अरुणिमा पर हंस रहे थे और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ हो जैसी बातें मत करो अरुणिमा। आस्तिक अगर मेरा बेटा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। उसका पावर, प्रॉपर्टी और पैसा सब कुछ मेरे नाम से है। अगर आस्तिक मुझसे अलग हो जाएगा तो उसका खुद का कोई वजूद नहीं होगा। अरुणिमा के दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ आने लगी। उसकी शादी से लेकर अब तक पुष्कर जी का हर वक्त एक अलग चेहरा वो देख रही आ रही थी, लेकिन आज पहली बार शायद वो असली पुष्कर रायसेन को देख रही है। एक स्वार्थी इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी नहीं। अरुणिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पुष्कर जी ने कहा, इस बारे में ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। आस्तिक की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि वो अपने प्यार, पागलपन और ज़िद की वजह से वो सब कुछ खो देगा जिसकी वजह से आज उसका वजूद है।